सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 16th एपिसोड की। इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे द्युत क्रीड़ा की, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को इंद्रप्रस्थ भेजा। वहां जाकर विदुर जी ने राजा युधिष्ठिर को राजा धृतराष्ट्र का संदेश देते हुए द्युत क्रीड़ा के लिए उन्हें सभी भाइयों सहित हस्तिनापुर आने के लिए कहा। वचनबद्ध राजा युधिष्ठिर परिवार सहित हस्तिनापुर आ पहुँचे हैं। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ द्युत सभा में। द्युत सभा में उपस्थित सभी राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। सभी के स्थान ग्रहण करने के बाद सुबल कुमार शकुनी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज द्युत की तैयारी हो गई है, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए द्युत क्रीड़ा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, राजन जुआ तो एक प्रकार का छल है और कलह का कारण है। इसमें न तो कोई क्षत्रियोचित पराक्रम है और ना ही इसकी कोई निश्चित नीति है, फिर आप इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? जुआरियों का सम्मान केवल छल कपट से ही होता है, सज्जन पुरुष के लिए वह प्रशंसा नहीं है। शकुनी ने कहा, राजन जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले ही समझ लेता है वो षटता का प्रतिकार करना जानता है और पासे फेंकने से समस्त व्यापारों में उत्साह पूर्वक लगा रहता है, और जो बुद्धिमान पुरुष द्युत क्रीड़ा जैसे विषय की सब बातों की जानकारी रखता है वह जुए का असली खिलाड़ी है। वह द्युत क्रीड़ा में दूसरों की सारी षटतापूर्ण इच्छाओं को सह लेता है। राजन यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित होना ही पड़ता है, इसीलिए जय पराजय पासों के ही आश्रित है, उसी में पराजय की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। आप शंका न कीजिए, दाव लगाइए, अब विलंब न कीजिए महाराज, युधिष्ठिर ने कहा। ऐसा कहा जाता है कि जुआरियों के साथ षटता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। धर्म अनुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है, क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। कुटिलता और षटता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। हम लोग जिस धन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं उसको तुम जुआ खेलकर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा नहीं करो। मैं धूर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख और धन को पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरियों के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते। युधिष्ठिर को द्युत के लिए मनाते हुए शकुनी ने दोबारा कहा, राजन एक विद्वान दूसरे विद्वान के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है तब षटता से ही काम लेता है। विद्वान मूर्ख को षटता से ही पराजित करता है, परंतु इसे लोग षटता नहीं कहते। धर्मराज जो द्युत में पूर्ण शिक्षित हैं वह अशिक्षितों पर षटता से ही तो विजय प्राप्त करते हैं। विद्वान पुरुष मूर्ख को जो परास्त करता है वह भी षटता ही है, किंतु लोग उसे भी षटता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को और बलवान पुरुष दुर्बल को षटता से ही जीतना चाहता है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को षटता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे षटता नहीं कहते। इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ षटता की जाएगी, तो यदि आपको द्युत करने से हारने का भय है तो आप पीछे हट जाइए, युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा। राजन मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, यह मेरा निश्चित व्रत है। आप यह बताइए कि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनमें से किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा। मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाव लगाएगा। इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर के वचन सुनकर उत्सुक हुए दुर्योधन ने कहा, महाराज दाव पर लगाने के लिए धन रत्न मैं दूंगा, लेकिन मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर ने कहा, दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। इस बात को समझ लो, फिर इच्छा अनुसार जुए का खेल प्रारंभ करो। यह सब देखकर पितामह भीष्म, विदुर जी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि सभी विद्वान पुरुष असंतुष्ट मन से उस सभा का हिस्सा बने। उनके बैठ जाने के बाद वहां भाइयों की द्युत क्रीड़ा आरंभ हुई। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि राजा युधिष्ठिर ने उस सभा में क्या क्या दाव पर लगाया था। दाव लगाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, राजन यह समुद्र से उत्पन्न हुआ मणि रत्न बहुत बड़े मूल्य का है। मेरे सभी हारों में यह सर्वोत्तम है तथा इस पर उत्तम सुवर्ण जड़ा गया है। मेरी ओर से यह दाव पर रखा गया है। इसके बदले में तुम्हारी ओर से कौन सा धन दाव पर रखा जाता है? दुर्योधन ने उत्तर दिया, मेरे पास मणियां और बहुत सा धन है। मुझे अपने धन पर कोई अहंकार नहीं है। आप सुख से इसको जीतिए। तभी पासे फेंकने की कला में निपुण शकुनी ने पासों को हाथ में लिया और उसे फेंक कर युधिष्ठिर से कहा, राजन ये लो, यह दाव मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, सुबल कुमार आपने छल से इस दाव में मुझे हरा दिया, इसी पर आप गर्वित हो उठे हो। आओ हम लोग दोबारा परस्पर पासे फेंक कर जुआ खेलें। मेरे पास हजारों रत्नों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां रखी हैं। इसके सिवा मेरे पास खजाना है, अक्षय धन है और अनेक प्रकार के सुवर्ण हैं। राजन मेरा यह सब धन मैंने अगले दाव पर लगा दिया है। यह सुनकर शकुनी ने पासे फेंकते हुए दोबारा कहा, लो यह दाव भी मैंने जीत लिया। दोबारा दाव लगाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, यह जो रथों में श्रेष्ठ जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है जो हम लोगों को यहाँ तक ले आया है, यह अकेला ही 1000 रथों के समान है। इसके ऊपर बाघ का चमड़ा लगा हुआ है। घोड़ों सहित यह रथ मेरा धन है जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने दोबारा पासे फेंके और जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, लो यह भी मैं जीत गया। अब दाव लगाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 1,00,000 दासियां हैं जो स्वर्ण के आभूषण धारण करती हैं, जिनके हाथों में शंख की चूड़ियां और बाहों में भुजबंद, कंठ में रत्नों का हार सुशोभित होता है। राजन मेरा यह धन है जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ अपना अगला दाव खेलता हूँ। यह सुनकर कपटी शकुनी ने जीत का निश्चय करके पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, राजन यह दाव भी मैंने जीत लिया। अब युधिष्ठिर ने दोबारा दाव लगाते हुए कहा, दासियों की तरह ही मेरे पास 1,00,000 दास हैं। वे चतुर, बुद्धिमान, संयमी हैं। ये हाथों में भोजन पात्र लिए दिन रात अतिथियों को भोजन परोसते रहते हैं। राजन यह मेरा धन है जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने अपनी ही जीत का निश्चय करके दोबारा पासे फेंके और कहा, लो ये दाव भी मैं जीत गया। युधिष्ठिर ने कहा, सुबल कुमार मेरे यहाँ 1,000 हाथी हैं, जिनको बांधने के रस्से भी सोने के हैं। वे सदा आभूषणों से विभूषित रहते हैं। उनके गले में सोने के हार सुशोभित होते हैं। वे सब के सब बड़े बड़े नगरों को नाश कर देने की शक्ति रखते हैं। राजन यह मेरा धन है जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। शकुनी ने हंसकर फांसे फेंकते हुए कहा, इस दाव को भी मैंने जीत लिया राजन। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 1,000 रथ हैं, जिनकी ध्वजाओं में सोने के डंडे लगे हैं। राजन यह मेरा धन है, इसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। उनके ऐसा कहने पर शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, लो यह दाव भी मैं जीत गया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे यहाँ गंधर्व देश के घोड़े हैं जो सोने के हार से विभूषित हैं। शत्रु दमन, चित्ररथ, गंधर्व ने युद्ध में पराजित होने के पश्चात अर्जुन को प्रेम पूर्वक वे घोड़े भेंट किए हैं। राजन यह मेरा धन है जिसे दाव पर लगाकर मैं अगली बाजी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। शकुनी ने अपनी जीत का निश्चय करके पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने जीत लिया है राजन। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 10,000 श्रेष्ठ रथ हैं, जिनमें छोटे बड़े वाहन सदा जुटे ही रहते हैं। इसी प्रकार मेरे पास प्रत्येक वर्ण के हजारों चुने हुए योद्धा मेरे यहाँ एक साथ रहते हैं। वे सब के सब पराक्रम से संपन्न हैं और शूरवीर हैं। यह मेरा धन है, जिसे दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने कहा, यह दाव भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की 400 खजाने से भरी हुई पेटियां हैं। हर एक पेटी में 5-5 द्रोण सोना भरा हुआ है। वह सारा सोना तपाकर शुद्ध किया हुआ है। उनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती है। मेरा यह धन मैं दाव पर रखता हूँ और तुम्हारे साथ खेलता हूँ। शकुनी यह दाव भी जीत गया। यह सब देखकर विदुर जी ने दोबारा राजा धृतराष्ट्र से कहा,
महाराज विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि भारत मुमूर्षोरौषधम् इव न रोचेतापि ते श्रुतम्।
राजन, जैसे रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आपको मेरी यह शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं यह बात कह रहा हूँ, यह पापी दुर्योधन जन्म के समय साधारण शिशुओं की भांति रोया नहीं था, बल्कि गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसी समय यह तय हो गया था कि यह कुरुकुल के विनाश का कारण बनेगा। यह आपके घर में पुत्र रूप में गीदड़ ही निवास करता है, लेकिन मोहवश आपको यह सब दिखाई नहीं देता। महाराज, अभी भी समय है, इस अनर्थ को रोक लीजिए। क्या राजा धृतराष्ट्र विदुर जी की बातों को मानेंगे या नहीं, यह जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।